वहाँ अकल भी बढ़ेगी, और उसके मुकाबले में जहालत और शहवत ये भी एक चीज़ है, जहाँ जहालत और शहवत बढ़े जाएँ तो वहाँ तहारत भी घट जाएगी, अकल भी घट जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और शहवत की अकसाम भी बयान हो रही है कि किन किन शहवतों पे कंट्रोल करना है, वरना हमारी बातनी तहारत ख़त्म हो जाएगी, यानी हमारी अक्ल ख़त्म हो जाएगी। एक शहवत जो आम हम समझते हैं वही इमोशन, सेक्सुअल डिज़ायर, अगर ये इंसान के अक्ल को ग़ुलाम बना ले तो इंसान एक वहशी दरिंदा बन जाता। ये जो हर एक मिनट में अमेरिका में रेप्स होते हैं, की वजह क्या है कि सारे प्रोग्राम जो हैं वो ऐसे ही हैं कि इंसान की शहवत बढ़ाई जाती है, अक्ल घटाई जाती है। हाँ जी, अक्ल घटाई जाती है, शहवत बढ़ाई जाती है। अगर वो इंटरनेट पे जाए तो वही काम है कि शहवत बढ़ाई जाती है, गंदे फोटो, गंदे पिक्चर, अखबार देखे, रेडियो देखे, मैगजीन देखे। तो एक इंसान होता है, मगर जब शहवत उस पर कंट्रोल कर ले तो वो हैवान बन जाता है। सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले। और अल्लाह ने इंसान को आज़ाद खल्क किया है, फ्रीडम जो है ना, ये आपका हक है, आपका राइट है। अल्लाह ने हर इंसान को आज़ाद खल्क किया है। आज़ादी नेमत है, आज़ादी इज्जत है, ग़ुलामी पस्ती है, ज़िल्लत है। हर इंसान को अल्लाह पाक ने आज़ाद खल किया है, और शैतान उसे ग़ुलाम बनाना चाहता है मगर उसे बना नहीं सकता। पहले शैतान क्या करता है, शहवत बढ़ा देता है, शहवत के ज़रिए से पहले उसे हैवान बनाता है, फिर ग़ुलाम बनाता है। देख, लिहाजा शहवत निजासत है, उस पर कंट्रोल करेंगे तो हमारे अंदर तहारत आएगी। इस पर गुफ्तगु हो चुकी है, दुनिया में रैप्स इसी वजह से हैं, दुनिया में एड्स की बीमारियाँ इसीलिए कि शहवत पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, कई किस्म के कैंसर में लोग मुब्तला हैं क्योंकि शहवत उम्र गालिब है, निजासत है शहवत, क्योंकि अक्ल को वो अपने पावर में ले लेती है। दूसरी शहवत आपने सुनी माल की, कि माल की शहवत जो है वो तो जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वो भी बढ़ती चली जाती है, जबकि ये शहवत उम्र के साथ घटती है, वो शहवत बढ़ती है। न यतीम का हक देता है, न गरीब का, न मिस्कीन का। और तीसरी शहवत उससे भी ख़तरनाक है, वो है मकाम की शहरत, कि हमें जनाब प्रेसिडेंट बना दो, हमें रईस बना दो। ये रियासत की दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल ग़ारत गरी इसी चक्कर में हुए हैं कि हम रईस बन जाए, हम बड़े बन जाए। हालांकि है कुछ नहीं, ख्याली वहमी लज्जत है। और उसके बाद कल जो आपने सुना था वो क्या शहवत थी जनाब, पेट की शहवत। ये पेट की शहवत की मुसीबत है कि इंसान कई बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और रूहानी मकामात को कभी हासिल नहीं कर सकता है। जो पेट पे कंट्रोल कर ले वो वली खुदा बन सकता है, और जो पेट पे कंट्रोल नहीं कर सके वो बेचारा एक आम इंसान रहता है, कभी बुलंद मारिफत नहीं हासिल करता, आलम गैब को नहीं देख सकता, बरज़ख को नहीं देख सकता, रूहानी मकामात से महरूम है। और दुनिया में भी कभी इस बीमारी में, कभी उस बीमारी में, पेट की वजह से कई बीमारियों में बेचारा मुब्तला है। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का बहुत सख्त जुमला है, बहुत सख्त जुमला है कि पेट की ग़ुलामी से बचो। शिकम परस्ती कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये दुनिया में भी 10-20 साल पहले इंसान मर जाता है या बीमारियों में रहता है। मौला ने अपने चाहने वालों को पेट की ग़ुलामी से बचने के लिए बहुत सख्त जुमला कहा है, ताकि कोई मोमिन पेट परस्त ना रहे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मौला अलैहि सलाम फरमाते हैं, जिस इंसान की ज़िंदगी किचन और टॉयलेट के दरमियान में गुजरती है, खाता है फिर जाके खाली करता है, खाता है फिर जाके खाली करता है, पता नहीं दिन में कितनी मरतबा खाता। और यहाँ तो माशाल्लाह आपके सुपर स्टोर इतने हैं कि अगर उस ज़माने का कोई इंसान आता पता नहीं अपना क्या हशर करता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। पर मौला अलैहिस्सलाम जिसका हम वो गम सारा जो कोशिश है कि पेट भर जाए पेट भर जाए, लजीज खाने, जिस इंसान की जिंदगी किचन और टॉयलेट के दरमियान, न कोई मारिफत है, न कोई हिकमत है, न कोई फलसफा है, न कोई खिदमत मखलूक खुदा है, बस खाता है, पुर करता है, फिर जाके खाली करता है, खाता है फिर जाके खाली करता है। एक सख्त तरीन जुमला है, मौला फरमाते इन इंसान की वैल्यू अल्लाह की नजर में कुछ भी नहीं, उसकी सारी हिम्मत कोशिश, जो भी कमाता है किचन में लाता है फिर जाके टॉयलेट में फेंकता है, पूरी हिम्मत उसकी पेट है, उसका खुदा पेट है, पेट परस्त है, ना हलाल का ख्याल ना हराम का ख्याल, खाता है खाली करता है, पुर करता है खाली करता है। उसके बाद ये जुमला यहां तक भी मौला ने रुके नहीं, ताकि मौला हमें बचाना चाहते हैं पेट की गुलामी से। मौला फरमाते उस इंसान की वैल्यू अल्लाह के पास कुछ भी नहीं है, शिकम परस्त है, पेट परस्त है, कुछ नहीं देखता। फरमा उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू बस वही है जो उसके पेट से खारिज होता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। नहीं, उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं अल्लाह पाक की नजर में। हमको अल्लाह ने इसलिए खल्क नहीं किया कि बस खाते जाएं और खाली करते जाएं। कहते हैं कुछ खाते हैं जीने के लिए, कुछ जीते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। लिहाजा ये औलियाए खुदा का जो नुस्खा है, 40 दिन आप न करें, कम से कम एक हफ्ता तो करके देखें कि हमारा पेट पर कितना कंट्रोल है। तर्क हैवानी कि कोई हैवानी चीज हम 7 दिन के लिए नहीं खाएंगे, गोश्त नहीं खाएंगे, दूध नहीं खाएंगे, मक्खन नहीं खाएंगे, जितनी मजेदार चीजें मिठाई न खाएं, तो देखें हम पेट के गुलाम तो नहीं है। सलावत पढ़ी मोहम्मद। कभी कभी कम से कम एक हफ्ता कर लिया करें इंसान, ताकि पता चले, इरादा भी मजबूत होता है और पता भी चलता है मैं कितना पेट परस्त हूं। सलवात पढ़ी मोहम्मद। शहवत शिकम इंसान को अंधा कर देती आलम गैब से। अब एक दूसरी शहवत भी है और वो है शहवत कलाम, बोलने की शहवत। सलवात पढ़ी मोहम्मद। इसे भी अखलाक इस्लामी में शहवत कहा गया है कि बाज लोगों को इतनी शहवत है, खाने से ज्यादा बोलने की शहवत है, वो चुप नहीं रह सकते हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद। अब जो खवातीन का मसला है, कहते हैं कि भाई दो खवातीन बैठी हुई थी और आपस में बात नहीं हुई, का ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है, हो ही नहीं सकता। उनका मसला और है, जो खवातीन ज्यादा बातें करती हैं आप उन पर एतराज न किया करें, अल्लाह पाक ने उनको ये ज्यादा ताकत दी है और जब वो ज्यादा बोलती हैं उन्हें सुकून मिलता है। हकीकत बता रहा हूं, साइंटिफिकली ये रिसर्च हुई है, जब औरत ज्यादा बोलेगी तो ब्रेन से एक लिक्विड निकलती है जो उनको सुकून देती है। वो अल्लाह ने उन्हें बहुत ताकत दी है बोलने की, क्यों, ये ज्यादा बोलेंगी तो तभी बच्चों की तरबियत कर सकेंगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसे खल किया, मर्द के लिए ऐसा नहीं है। ये साइकोलॉजिस्ट ने भी बाकायदा प्रैक्टिकल रिसर्च हुई है, औरत अगर ज्यादा ना बोले बीमार हो जाती है। ये शोहर थका हुआ होता है, वो कहता है, वो उसकी अल्लाह ने नेचर ऐसी बनाई है कि वो ज्यादा बोलती है। ज्यादा बोलना उसके लिए सेहत की निशानी है, अगर नहीं बोलेगी वो बेचारी बीमार हो जाएगी, और अल्लाह ने उसे क्यों खल किया है। अब देखिए, जो माएं बच्चों को कहानियां बचपन में सुनाती हैं, अभी रिसर्च हुई है, वो बच्चे ज्यादा जहीन होते हैं, यानी जो माएं बच्चों से ज्यादा बोलती हैं जल्दी बोलने लगते हैं, ज्यादा जहीन होते हैं। जो माएं नहीं बोलती उनके बच्चे इतने जहीन नहीं होती हैं। ये जो अल्लाह ने औरतों को खल किया है कि उन्हें ज्यादा बोलने की आदत है, वो बच्चों की तरबियत की खातिर है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। लेकिन अगर मर्द हजरात भी यही काम करना शुरू कर दें तो ये उनके लिए ऐब है, ये शहवत है कलाम की, कि जनाब शहवत है, बोलें बोलें। इसीलिए कहते हैं कि कभी ये भी ट्राई कर लिया करें, यानी कंट्रोल के लिए, मुझे जबान पे कितना कंट्रोल है, कुल्लन ये हराम है, यानी न बात करने का रोज़ा हज़रत मरियम ने रखा था और हज़रत ज़करिया ने रखा था, रोज़ा नहीं रख सकते आप, लेकिन कम से कम आप ख़ुद को चेक कर सकते हैं कि मेरा ज़बान पे कितना कंट्रोल है। मसलन एक दिन मैं वाजिब और मुस्तहब के सिवा कुछ बात नहीं करूँगा। सलवात पढ़ी मोहम्मद वालिम, एक दिन ज़रा ट्राई करके देख लें कि जो लफ्ज़ वाजिब होगा बोलूँगा या मुस्तहब है। मसलन किसी को नसीहत करना वाजिब है या मुस्तहब है बोलूँगा, कोई हदीस बोलूँगा। इसके अलावा ये बना फुटबॉल की बातें हो रही हैं, सियासतदानों की बातें हो रही हैं, एक्टरों की बातें हो रही हैं, फजूल गीबतें हो रही हैं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो ये तहारत ज़बान से इसका ताल्लुक है कि तहारत ज़बान तब आएगी जब शहवत कलाम पर कंट्रोल होगा। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले, तो ज्यादा बोलना क्यों बुरा है? अब मौला अली से पूछ लें कि मौला जो ज्यादा लोग बोलते हैं ये क्यों बुरा है? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा खता करता है। लाजमी जब ज्यादा बोलें सोचे समझे बोलेंगे ना, बगैर बोलेंगे ना। जो ज्यादा बोलेगा ज्यादा खता करेगा, और जो ज्यादा खता करेगा उसका दिल मुर्दा हो जाएगा। असल तो दिल है, जहाँ ईमान आता है, तकवा, सब कुछ दिल है ना। तो जो ज़्यादा बोलता है ज़्यादा ख़ता करता है, जो ज़्यादा ख़ता करता है दिल मुर्दा हो जाता है। जब दिल मुर्दा हो जाता है तो न नमाज में लज्जत मिलती है, न दुआ में लज्जत मिलती है, न तिलावत कुरान में। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, और अक्ल की दलील यह है जो सबसे कम बोलता है तो ये इंसान अकलमंद है। तो अकल बढ़ती है, यानी हमारे कुंभ में जितने महाराज थे उनमें सबसे ज्यादा कम बोलने वाले आयतुल्ला बहजत थे। सिर्फ कलाम नहीं करते, हमेशा जिक्र खुदा में मशगूल रहते थे। इस्तखारा भी लोग निकालते तो यूं जवाब देते, ये यानी बुरा है, ये यानी अच्छा है, ये दरमियाना, बात नहीं करते थे। और सबसे अकलमंद तरीन आयतुल्ला उज़्मा थे, यानी हमने उनसे साइंस के सवाल पूछे, साइंस तो नहीं पढ़ी थी, अकल जब कामिल हो जाए तो हर इल्म खुदा देता। केमिस्ट्री फिजिक्स के सवाल हमने पूछे और वो यूं दो मिनट में जवाब देते थे। हैरान थे कि हम उनकी अकल इनकी कितनी कामिल है, ये साइंस पढ़ा हुआ बंदा नहीं है, और साइंस की थ्योरी पे वो बेहतरीन जवाब देते थे, साइंस के बारे में जवाब देते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम बोलने वाले वही आलिम थे। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले, और जबान की तहारत बहुत जरूरी है, क्योंकि हदीस पाक में सबसे ज्यादा लोग जो जहन्नम में जाएंगे वो जबान के गुनाहों की, यानी शहवत, वो जो सेक्स की शहवत है वो खतरनाक है, मगर ये नहीं कहा कि सेक्स की शहवत की वजह से लोग ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। अब ये बहुत बड़ा मसला है, हाँ जी, इतना जिना है ये है, मगर फरमाया नहीं सबसे ज्यादा जहन्नम में कौन जाएंगे, ये शहवतें कलाम की वजह से, जबान की शहवत की वजह से लोग सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। क्योंकि हम समझते हैं ये गुनाह ही नहीं है, जानी को तो पता है मैं गुनाह कर रहा हूं, जो रेप कर रहा है उसे पता है मैं गुनाह कर रहा हूं, मगर जो मस्जिद में बैठकर मजे मजे लेकर गीबत कर रहा है वो समझते हैं ये गुनाह ही नहीं है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले, कोई आदमी मस्जिद में जिना करेगा? हरगिज़ नहीं, कितना बदबخت भी हो यहाँ के ना शराब पी सकता है ना जिना करे, तो मस्जिद है। पर कितने लोग हैं मस्जिद ही में गीबत करते हैं, जबकि हदीस पाक अल-गीबत अशद्द मिन अज़-ज़िना, गीबत जिना से बढ़कर गुनाह है, बढ़कर गुनाह। हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। आज बताइए कि किस घर में गीबत नहीं होती, किस इमाम बरगाह में गीबत नहीं होती। आज हम गीबत को गुनाह ही नहीं समझते, औलिया खुदा की नजर में ये जिना है। अगर किसी घर में जिना है तो उस घर में नहुसत है। इसी तरह से अल्लामा तबा तबा जो साहिब तफसीर अल मीज़ान है, उस शागिर्द उनको दावत करके अपने घर में ले आए, फरमाए ये घर बदल दो, किराए का घर, ये घर बदल दो, इसमें नहुसत है। कहा क्यों? कहा यहां गीबत की गई है, जिस घर में गीबत है वैसे उससे बदतर है जिस घर में जिना हो। बताइए बाप कितने घर बदलेंगे, जबान पे कंट्रोल ही नहीं है, जबान की तहारत ही नहीं है। हाँ जी, और गीबत भी करते हैं, फिर हम उसका डिफाइन भी करते हैं, डिफेंस भी करते हैं, नहीं नहीं मौलाना गीबत थोड़ी, ये तो उसमें बुरी आदत है। सलवात पढ़ी मोहम्मद। फिर हम डिफेंस भी करते, नहीं हम सच बोल रहे हैं भाई, सच ही का तो नाम गीबत है। अगर किसी में ऐब है आप बयान करें तो गीबत है, अगर उसमें ऐब नहीं तो उससे बड़ा गुनाह वो तोहमत है। सलवात पढ़ी मोहम्मद। अजीजों गीबत से बचो, गीबत आज वाकयन हमारे माशरे में गीबत को गुनाह नहीं समझा जाता। कौन सा घर है जिसमें गीबत ना होती हो, कौन सी महफिल है जिसमें गीबत ना होती, कौन सी मस्जिद इसमें गीबत ना होती, जबकि इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा। इसीलिए फरमाया कि सबसे ज्यादा जहन्नम में जिना की वजह से लोग नहीं जाएंगे, ये जबान के गुनाहों की वजह से, क्योंकि जबान का एक दो गुनाह भी नहीं है, जबान के 18 गुनाह तो कबीरा है। इसमें गीबत हो गया, तोहमत हो गया, फितना हो गया, जो कत्ल से बड़ा गुनाह है, दो मोमिन को लड़ाना, हाँ जी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करना, हाँ झूठी गवाही देना, हक को छुपाना, 18 गुनाहाने कबीरा हैं और 100 तकरीबन दो छोटे छोटे गुनाह हैं। इसीलिए फरमाया कि सगीरा गुनाह 100 से ज्यादा, कबीरा टोटल 40 गुनाह है, यानी 50% जो गुनाहों का ताल्लुक है जबान से। इसीलिए जब असहाब जो आरिफ बिल्ला वली खुदा साहबी थे, जब उन्होंने जबान के गुनाह सुने तो वो कनकरिया मुंह में रखते थे, कनकरिया पत्थर, कि एकदम न बोल पड़े, कभी एकदम बोलते गुनाह हो जाते सोचे समझे बगैर। वो बोलने से पहले पत्थर निकालते थे कि ये बोल रहा हूं, ये अल्लाह के लिए बोल रहा हूं, नफ्स के लिए बोल रहा हूं, मुस्तहब बोल रहा हूं या वाजिब बोल रहा हूं, फिर बोलते, फिर वापस मुंह में पत्थर रख लेते। इस कदर गुनाह सख्त है जबान के, मगर आज हम उसे गुनाह ही नहीं समझते। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि दो सिर्फ दिन रह गए, टॉपिक बहुत बड़ा है, आंखों की तहारत बयान ना हो सकी, हाथों की तहारत, पांव की तहारत, दिल की तहारत, लेकिन दो तहारतें सबसे ज्यादा अहम हैं, तो आज उसी पे बात करते हैं, वो है ख्याल की तहारत। सबसे अहम, सबसे ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट है ख्याल की तहारत, और उससे बढ़कर है अक्ल की तहारत, मगर इब्तदा ख्याल की तहारत। और देखिए ख्याल अगर ताहिर हो जाए, सवाल भी पूछा गया है डिप्रेशन के बारे में, अगर किसी इंसान का ख्याल पाक हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता उसे टेंशन और डिप्रेशन। जिसको भी परेशानी होती है ना, ये ख्याल उसका पाक नहीं है, डिप्रेशन दलील है कि ख्याल नजिस है, खौफ, खौफ भी दलील है कि ख्याल नजिस है। अगर इंसान का ख्याल पाक हो जाए, कोई डर अल्लाह के सिवा डर नहीं रहेगा, और कभी डिप्रेशन में इंसान नहीं जा सकता, कभी टेंशन में नहीं जा सकता, ये सब ख्याल की निजासत पर दलालत की चीजें हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और ये इतना अहम मौजू है कि इस पर बहुत बोला जाए, मगर तकरीबन 0% इस पर बात होती है, ख्याल की तहारत, हाँ जी कोई नहीं बोलता है। सबसे अहम तरीन है ख्याल की तहारत, यानी ये हदीस बस है कि प्यारे पाक नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हदीस बयान की है, ये ख्याल की तहारत की अहमियत के लिए बयान की है। असलन नमाज का सबसे अहम तरीन गोल, अहम तरीन मकसद ख्याल की तहारत। जो नमाज वाजिब है ना, अगर नमाज कबूल तो सारे अहमाल कबूल, नमाज का सबसे बड़ा जो गोल है वो हमारे ख्याल को ताहिर करना है। इसीलिए प्यारे पाक नबी ने कहा कि 2 रकत नमाज कोई 100% तवज्जो के साथ, हुजूर कल्ब के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पढ़कर दिखाए तो अल्लाह के रसूल फरमाते मैं वादा करता हूं उस पर जन्नत वाजिब है। यह असल में ख्याल की तहारत है, यानी ख्याल पे कंट्रोल, कि दो मिनट आपने ख्याल पे कंट्रोल किया तो कंट्रोल हो नहीं सकता, जब तक कि ख्याल ताहिर ना हो तो आप पे जन्नत वाजिब है। तो आपने देखा ख्याल की तहारत का एक फायदा क्या है कि डिप्रेशन कभी नहीं होगा, टेंशन कभी नहीं होगा, कभी खौफ नहीं होगा, कभी फोबिया नहीं होगा, कभी डर नहीं होगा। ये जितने लोग यहाँ पर फोबिया में मुब्तला है, ख्याल इनका नजिस है। हाँ, ख्याल ताहिर हो जाए तो दुनिया भी ये मज़े हैं कि आपको जो ज़िंदगी में असल मज़ा मिलेगा, असल ज़िंदगी का लुत्फ वही उठा रहे हैं जिनका ख्याल पाक है। हमारे ख्याल इधर उधर फिर रहे हैं और हमें सुकून नहीं है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आखिरत की बात अगर सुनना चाहते हैं, आखिरी लज्जत, आखिरत की लज्जतें, मानवी लज्जत, रूहानी लज्जतें भी उनके लिए हैं जिनका ख्याल पाक है। यानी इरफान का जो दरवाज़ा है, इल्म गैब का जो दरवाज़ा खुलता है, आलम बरज़ख का दरवाज़ा खुलता है, वो ख्याल की तहारत के बाद खुलता है। समझे? मानवी जितने मकामात हैं वो तब मिलेंगे जब आपका ख्याल पाक हो जाए। तभी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियून को कहा, ये खासुल खास असहाब थे, कहा मैं तुम्हें ये नहीं कहता, ये आम आवाम को कहता हूं जिना न करो, आवाम के लिए, तुम मेरे खास सहाबी है। उनको क्या कहा? अलबत्ता सबके लिए, लेकिन दूसरे कर नहीं सकते इस मंजिल पर, लिहाजा खासुल खास असहाब के लिए जुमला है, मैं ये नहीं कहता तुम जिना न करो, मैं ये तुम्हें कहता हूं तुम जिना का ख्याल भी न लाओ। ये ख्याल की तहारत, एक मतलब के गुनाह न करो, मगर ख्याल की तहारत यह है कि गुनाह का ख्याल भी ना आए। इसे कहते गुनाह, गुनाह से बचने का सबसे आला तरीका, और इसे कहते ख्याल की तहारत। तो इंसान वली खुदा बन जाएगा ना जब गुनाह न करना बड़ी बात है, वहां कहते गुनाह का ख्याल भी न लाओ। गुनाह का ख्याल उस वक्त इंसान नहीं ला सकता है जब इंसान का 100% ख्याल पर कंट्रोल हो। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। कैसे हो सकता है? अब तो हम जितने हम लोग बैठे हैं, हमारे जो ख्यालात हैं हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हाँ जी, यहीं बैठे हुए ना, ख्याल जो ना परिंदे की तरह है, कभी उड़ के उस दरख्त पे जाता है, कभी उधर जाता है। अब यहीं बैठे कभी घर का ख्याल आता है, वो टीवी चल रहा है या बंद किया है, यहीं बैठे बच्चा क्या कर रहा है, कभी ख्याल घर का आता है, कभी अस्पताल का, कभी कहीं का, कभी कहीं का, ये ख्याल उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। अब इसको एक जगह पर बिठाना ये अजीम शान काम है, बहुत मुश्किल, मगर सबसे अजीम तरीन रियाजत और इबादत ख्याल की तहारत। कोई वली खुदा नहीं बन सकता जब तक के ख्याल की तहारत न समझे और उस पर अमल न करे। सलवात पर मोहम्मद वाले। और दुनिया में कितने लोग होंगे जिनको अपने ख्याल पे कंट्रोल होगा? 1% तो कहने के लिए 1% से भी कम। ख्याल पे तहारत सबसे मुश्किल काम। नमाज का मकसद यही है, तभी तरगीब दी गई कि नमाज में तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। और ये बहुत मुश्किल तरीन मसला है, मगर मुश्किल कुशा ने इस मसले को आसान कर दिया। असल बात पर दे मोहम्मद। ये अहले बैत के नुस्खे दुनिया के किसी शख्स के पास नहीं, किसी कौम के पास नहीं। ये खजाना आपके पास है जो अहले बैत ने बतलाए हैं। हाँ, तभी तो ये सूफिया किराम भी मानते हैं कि कोई शख्स वली नहीं बन सकता जब तक के अली को वली न माने। विलायत अहले बैत के दर से मिलती है, करामत अहले बैत के दर से मिलती है, वरना कोई शख्स, कोई माँ का लाल इसमें ताकत नहीं कि ख्याल पे कंट्रोल कर ले। सारे दुनिया के लोग ख्याल के गुलाम हैं, ख्याल उन पे चलाता, उन्हें चलाता है। और देखिए ना, ख्याल का असर तमाम अज़ा पर पड़ता है, तमाम अज़ा पर। अगर इस वक्त किसी के अंदर खौफ के ख्यालात आ जाएं तो आप देखिए पूरा बदन लरजने लगेगा। डिप्रेशन भी यही है, हाँ जी, टेंशन भी यही है। ख्याल, कोई बुरा ख्याल आया, कोई सदमा देखा था, कोई प्रॉब्लम देखा था, वो याद आया तो पूरे बदन में पूरा मूड आपका बदल जाएगा। इन्हें ख्याल आपके मूड को बदल देता है। ख्याल का असर आपके तमाम अज़ा पर है, तमाम वजूद जो है वो आपका ख्याल के ताबे है। लिहाजा ख्याल की तहारत कोई मामूली चीज़ नहीं है। यानी आपको हकीकी आज़ादी उस वक्त मिलेगी जब आप ख्याल को ताहिर कर दें। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले में। वरना हम सारे लोग जो हैं वो ख्याल के गुलाम हैं, सब ख्याल की गुलामी में हैं। ख्याल अगर पाक हो जाए तो आप हकीकी आज़ाद इंसान हैं और इंसान कामिल हैं। तो ये मुश्किल तरीन मसला मौला अली अलैहिस्सलाम ने हल कर दिया। किसी का मौला ख्याल को कैसे कंट्रोल करूं? नमाज में इधर का ख्याल आता है, उधर का ख्याल आता है, उधर का ख्याल आता है, नमाज की लज्जत चली जाती है। कि इसका आसान हल है, तीन आयतें हैं उन्हें मिलाकर पढ़ो। आयत सखरिया कहते हैं सूरह एराफ की 54, 55, 56। इन रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ध फ़ी सित्तति अय्याम से शुरू होता है मोहसिनीन तक, चलते फिरते वजू के साथ ये तीन आयतें पढ़ो। अब देखिए एक इस इन आयतों का एक फ़ायदा नहीं, जो भी अहले बैत ने बतलाया कोई नुस्खा भी है उसके इतने साइड बेनिफिट्स हैं कि जनाब यही जो तीन आयतें आप पढ़ेंगे ना, ख्याल भी पाक होता चला जाएगा और दूसरी नेमतें मिलती चली जाएंगी। अब इसी के ज़रिए से देखिए एक ही नुस्खा है उससे देखिए कितने बेनिफिट्स हैं। जिन इंसानों को नींद नहीं आती बेचारों को, ये आयत पढ़ के सोएंगे नींद आ जाती है उसी आयतों से। और अगर आपको पढ़ना लिखना ज़्यादा है, आप नींद कम करना चाहते हैं, तो भी वही आयतें पढ़ेंगे, नींद कम हो जाएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये कुरान का मौजज़ा है ना कि एक ही दवाई से नींद भी आ रही है, उसी दवा से नींद कम भी हो रही है। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। चलते फिरते आयत एक मरतबा याद कर लें। पाकिस्तान में जो तहकी बात है उसमें भी ये तीनों आयतें लिखी हुई आयतें सखरिया के नाम, मुसखर करने वाले, कंट्रोल करने वाले। इससे आपको ख्याल पे कंट्रोल हो जाएगा और ख्यालात आपके पाक हो जाएंगे। युवस्वसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, जो शयातीन वसवसे करके आपके ख्यालों को नजिस करते हैं, परेशान करते हैं, टेंशन में मुब्तला करते हैं, वो सारे ख्यालात ख़त्म हो जाएंगे और आपके पाक व पाकीज़ा ख्यालात हो जाएंगे। और इन आयतों के पढ़ने से अकल भी बढ़ जाएगी, हाफिजा भी बढ़ जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मौला अली अलैहिस्सलाम ने मसला हल कर दिया। अहल बैत के पास हर चीज का हल है अज़ीज़ाने गिरामी। और भी इंशाअल्लाह बहुत सारे नुस्खे हैं, मगर ये नुस्खा बहुत आसान है। तीन आयतें, छोटी आयतें याद कर लें और चलते फिरते इन आयतों को पढ़ें और फिर देखिए अल्लाह पाक आपके नसीब में क्या चीज़ भेजता है। हर एक का नसीब अलग अलग होता है। इन्हीं आयतों से मसलन अगर 10 तालिब इल्म हैं, 10 मोमिन हैं, शुरू करते हैं, लाजिम नहीं कि हर एक को वही चीज़ मिले। नहीं नहीं, अल्लाह के फैज़ में कमी नहीं है। आपको कुछ और मिलेगा, उसे कुछ और मिलेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बड़ी बरकात है इन आयतों की। ये वारिस कुरान को पता है कि कौन सी आयत किस बीमारी का इलाज है। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। अब पूछा गया डिप्रेशन, क्योंकि इन ममालिक में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, साइकेट्रिस्ट भी खूब कमाते, ठीक है ना। साइकेट्रिस्ट खुद तो कुछ करते नहीं, एक दो सेशन में तो सिर्फ आपसे बुलवाते हैं, वो कहते हैं ये बताओ ये बताओ, खुद आराम से बैठे रहते हैं। और जब दिल की भड़ास निकलती है तो थोड़ा सा कम कम हो जाता है। असल बात पड़ी मोहम्मद वाले। डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए खुद ये आयत भी बहुत अच्छी है, और जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह हर नमाज के बाद 1000 मरतबा बहुत अच्छा है। और तिब्बे मासूमीन में एक दवा भी है, आपको मिलेगी तो वहीं से, कुम से मशहद से इंशाल्लाह। अगर आप में से कोई हिम्मत करें, ये दवा यहाँ भी बन सकती है, लाखों हज़ारों को फ़ायदा भी दे सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। ये दवा मौजूदा है। मेरे पास दो पेशेंट आए कुम में, एक कहने लगे जी मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, इतना परेशान, और दूसरे पेशेंट जो थे बस रोते ही जा रहे थे। तो अहलबेत ने टेंशन को ख़त्म करने के लिए, तिब्बी अहलबेत में एक दवा है उसका नाम है सौदाबर, नोट कर ले वहाँ से मिल जाएगी, आयतुल्ला तब्रिज़ियान का मतलब कुम में मिल जाएगी सौदाबर। तो मैंने कहा ठीक है अभी आपको दवाई खिलाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो वो एक दाने के बराबर दवाई, ज़्यादा भी नहीं, जितनी अहलबेत दाने एक चने के बराबर, हमने दोनों को दवाई दी, फिर हम चले गए इधर उधर। तो चंद घंटे गुजर गए, अब हमने कहा अब आपका डिप्रेशन कैसा है, दोनों कहने कि हम हंसना चाहते। तो मैंने कहा मना किसने किया, सलवात पढ़ मोहम्मद जमान। इतना फौरन इफेक्ट होता है कि आप समझिए मौजजा है दवाई है। और यहाँ जो डिप्रेशन के लिए साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर एलोपैथी वाले दवाई देते हैं वो सुलाने की दवाई होती है कि बंदा सो जाए, तो प्रॉब्लम हल तो नहीं होता है, वो दबता रहता है दबता रहता है और उसके आखिर में नतीजा बंदा जाके सुसाइड कर लेता है। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो नशे आवर गोली जिसमें अफीम होता है वो देते हैं कि बंदा सो जाए, सोता रहे सोता रहे सोता रहे, तो मसला हल नहीं हुआ। डिप्रेशन जो हो रहा है यानी ब्रेन में कुछ हार्मोन्स स्ट्रेस हार्मोन्स बन रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये सौदाबर दवाई जो है उस स्ट्रेस हार्मोन्स को ख़त्म कर लेती है, और वो हार्मोन जो इंसान के अंदर खुशी पैदा करते हैं वो पैदा करती है। यानी एक दवाई भी अगर यहाँ आप नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च कर लें तो मिलियंस का बिजनेस, क्योंकि दो चार घंटे में उसका रिजल्ट है। यानी अहलुबैत की दवाओं को आम भी करें, ये खुद बिजनेस भी है, बहुत बड़ा बिजनेस। सलवात पर मोहम्मद वाल मोहम्मद। लेकिन सिर्फ दुनिया का बिजनेस नहीं कीजिएगा, आखिरत का बिजनेस भी करना है कि उन्हें मुसलमान भी बनाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद इमाम। और दूसरा सवाल है कि दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का बड़ा ही अजीब इलाज है, बड़ा आसान इलाज है। वो क्या है, सफ़ेद मिर्ची। हमारे घरों में काली मिर्ची होती है, सफ़ेद कम लोग रखते हैं। सफ़ेद मिर्ची का बड़ा मौजदा है, आपका जब भी जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए ना, 4, 5, 6, 7 सफ़ेद मिर्ची खा लें, फौरन डाउन हो जाएगा। और सनाए मक्की जो मैंने पत्ते कहे थे, सनाए मक्की रेगुलर 3 दिन के बाद इसको उबालें, आधा घंटा 2 गिलास हो तो 1 गिलास हो जाए, ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन चीज़ है, बल्कि हज़ारों और बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। और हार्ट की, सबसे ज़्यादा लोग हार्ट की बीमारी से मर रहे हैं। देखिए बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि हार्ट की बीमारी में आप कभी मुब्तला नहीं होंगे। हार्ट की 3 बीमारियां हैं जिनका इलाज एलोपैथी वालों के पास नहीं है, तिब्बे अहलबैत में मौजूद है। हार्ट की बीमारी का जो सबसे अच्छा इलाज है वो वही 2 वक्त का खाना है। 2 वक्त का खाना खाएं, नाश्ता ज़रूरी, रात को बीच में आप थोड़ा हल्का फुल्का जूस पी लें या फ्रूट खा लें, मगर खाना 2 वक्त का कर लें ताकि वज़न भी कम होगा हार्ट। और दूसरा शबे जुमा और जुमे के दिन अनार खाना, ये मुस्तहब है, मफातिल जिनान में लिखा है। अगर ये हम 2 अनार हफ्ते में खाएं कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी। और तीसरा सिरका, वो एप्पल का सिरका विनीगर, एप्पल विनीगर जो है नाश्ते में थोड़ा ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, रात में नहीं लें, एसिडिटी बढ़ जाएगी। जो लोग एप्पल सिरका लेते हैं उनकी रगें कभी बंद नहीं होती। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तीसरा आसान सा नुस्खा जो है वो अजवा खजूर है। वो किसी ने बेचारे ने अजवा खजूर कहा, मौलाना मैंने अजवा खजूर खा ली, मैंने कहा अजवा खजूर नहीं खाने, उसकी गुठली पीस के खाना है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अलबत्ता खुद अजवा खजूर भी पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छी है, कहते हैं ये मौजे से अहलबैत के मौजे से दरख्त हुए थे। बहरहाल बाद लोग कहते हैं अजवा खजूर की रिवायात में अहादीस में इसकी गुटली और इसका खुद बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये क्योंकि मशहूर हुआ था पाकिस्तान में, ये मिर्ज़ा असलम बेग जो चीफ ऑफ स्टाफ था वो जा रहा था ऑपरेशन कराने के लिए, किसी ने नुस्खा दे दिया भाई सुबह को 1 चमचा पीस कर, पीसना बहुत मुश्किल होता है अजवा खजूर के लिए, ख़ास ग्राइंडर होना चाहिए, 1 सुबह 1 शाम चमचा पी लें तो खा लें उसको पीस के, तो 1 हफ्ते में ये रगे बगे सारी खुल जाती हैं, वो ठीक हो गया। फिर उसका दूसरा दोस्त लंदन जा रहा था, उसे भी उसने रोक दिया, बहुत सिंपल है इंशाल्लाह। मैंने कहा कि ये थोड़ा बहुत आप धंधा भी करें ना इमाम बरगाह में, चंदे पे कैसे चलेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद इमाम। च
चंदे की अपील कर रहे हैं, आप लोग सखावत दिखाएं ताकि बार बार उन्हें आना नहीं पड़े। देखिए अजवा खजूर रख लें, छोटे बहुत नुस्खे रख लें और सबको पैसे पे दें तो ये सारा खर्चा इन नुस्खों से निकल जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। बहरहाल ये आपके ताबुनी से सारे इदारे चलते हैं, ये जो भी देंगे वो अल्लाह के राह में, यही असल पैसा आपका जो आपके साथ कब्र में जाना है। बैंक वाला तो रह जाएगा, पता नहीं वो बेटे कैसे निकलें, औलाद कैसे निकलें, कहाँ खर्च करें, लेकिन ये आपको श्योरिटी है कि जो अल्लाह की राह में दे रहे हैं वो आपके साथ जाएगा। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। देखिए अब ये मैंने सिंपल बता दिया, लेकिन हम सेमिनार इंशाल्लाह करने वाले हैं हार्ट की बीमारी पर और कैंसर पर भी, उसमें 20 प्रीकॉशंस बताएंगे, तो 4 घंटे का सेमिनार होगा और 20 आपको नुस्खे बतलाएंगे। उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ आप लोग ना आए, हिंदू को ले आए, मुसलमान को ले आए, क्रिश्चियन को, सारे मजाहिब को लेकर आए, क्योंकि नुस्खे अहले बैत के, उन्हें पता तो चले अहले बैत का इल्म क्या है, उनकी अजमत क्या है, और उन्हें शिफा जब मिलेगी यकीनन वो आशिक इमाम बन जाएंगे अगर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नुस्खे से। किसी हिंदू किसी सिख को शफा मिल गई तो वो क्या हो जाएगा, वो अहले बैत का आशिक हो जाएगा यकीनन। इस सेमिनार में इंशाल्लाह हम ऐलान करेंगे, वैसे हम ये आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आप रजिस्टर हो जाएं, जिसने भी ये सेमिनार अटेंड करना है, ये है @seminar14, ये भी उसी में सेमिनार, ये सारा टेलीग्राम में है, तो हमें पता चले अभी कुछ लोग रजिस्टर हुए हैं। और इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि सिर्फ मोमिनी ना आए बल्कि गैर मुसलमान आए, ये ख़ास एक तबलीग का मौका है, और इसको आप ही मीडिया पे भेज सकते हैं सारी दुनिया में कि यहाँ तो कैंसर के मरीज ज़्यादा हैं। मसलन कुछ अगर ये सोशल मीडिया पे जो लोग तबलीग कर सकते हैं, देखें कि कैंसर के कितने मरीज़ हैं और उन्हें टारगेट करें, गैर मुसलमानों को टारगेट करें, यकीन जानिए कैंसर के मरीज़ बेचारे वो मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर इनको शिफा मिल जाए 100% ये अहले बैत के आशिक हो जाएंगे। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। और इसके अलावा जो है हम ये मुहर्रम क्योंकि ख़त्म होने वाला है, हमारे एलिया यूनिवर्सिटी की तरफ से 3 कोर्सेज हमने फ्री रखे हैं, अगर इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन कर ले, बीए एमए हत्ता के वो डिप्लोमा भी, और एक तो कोर्स ये तिब्बे अहले बैत का है और दूसरा कोर्स जो है मोटिवेटर्स का है। देखिए मोटिवेटर्स की यहाँ पर ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये मिलियंस लोग कमाते हैं, हमारी चीज़ें चुराते हैं। मौला अली के अकवाल वो अपने नाम से बतला रहे हैं, कितने मोटिवेटर्स की किताबों मैंने पढ़ा है, मौला अली का कॉल है वो कह रही है मेरा कॉल है, और ये दीपक चोपड़ा हिंदू है, कितने हिंदू मोटिवेटर्स हैं, एक मुसलमान नॉर्थ अमेरिका मोटिवेटर्स नहीं है, एक वो सेमिनार में $500 लेते हैं, एक सेमिनार में मिलियंस कमाते हैं, 2000 के टोनी देखिए ताकि वो कहते हैं प्रेसिडेंट हो जाए, लोगों की जान बचा रहा है, खुदकुशी से बचा रहा है, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी जाते हैं। दीपक चोपड़ा तो सारी हमारी इरफानी चीज़ें चुराता है, रूमी की कुछ चीज़ें इसके पास है, मिस्टिज्म कुछ इस्लामी, इससे बढ़कर वो मौला अली के नाम से करोड़ रुपया कमा रहा है, लोगों को शिफा दे रहा है। वो क्या है मौला अली का नाम, जो मेडिटेशन ये करता है, इसके कितने सेंटर हैं, अंग्रेज डॉक्टर FRCS डॉक्टर MD डॉक्टर उसके शागिर्द हो गए, मौला अली के नाम को यूज़ कर रहा है, और हम बिल्कुल यहाँ पर सादा लोग बैठे हुए हैं, और वो तबलीग भी कर रहा है, सियासी फिगर भी बन चुका है, उसकी किताबें कितनी बिकती है, वो उसने जो सेंटर बताया वो पता है मेडिटेशन क्या करता है, ओम ओम मौला अली का नाम है, ओम इस तरह से ओम मौला अली का नाम है, लिखते भी इसी तरह से जैसे कूफी ख़त में अली लिखते, ओम इसी तरह से। ओम की मानी अगर आप संस्कृत टू इंग्लिश डिक्शनरी में जाके देखें, ओम की मानी है यदुल्ला, ये हमारी पूरी एक तकरीर है ओम पर, पहले हम बहुत पढ़ते थे वेदास से, पूरी एक तकरीर है, ओम की मानी है यदुल्ला, ओम की मानी है वजहुल्ला, ओम की मानी में ये है कि वजहुल्ला यदुल्ला, अल्लाह का चेहरा अल्लाह का हाथ, और इसी तरह से सारी सिफात जो ओम की बयान की गई है वो मौला अली के अंदर है, ज़ाहिर है मौला अली का नाम, वो बैठ के 1 घंटा कहेंगे ओम अली अली करेंगे तो शिफा तो मिलनी है, और वो क्रेडिट खुद लेता है कि ये मेरी मेडिटेशन का नतीजा है, और खूब पैसे भी लेता है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। मुसलमान मोमिनों में एक मोटिवेटर नहीं है नॉर्थ अमरीका में, जबकि ये हमारा सरमाया है, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा नौजवान आगे बढ़े, ये 4 साल का कोर्स हम उन्हें ग्रेजुएशन कराएंगे, पहले डिस्कशन सिखाएंगे जिसमें वो कई लोगों को मुसलमान भी कर सकते हैं, मुनाजरा सिखाएंगे भाई किस तरह से आप मुनाजरा कर सकते हैं मुख्तलिफ अकवाम से, किस तरह से उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। फिर उन्हें हम जो है ये खुद इरफान सिखाएंगे कि किस तरह से लोगों के डिप्रेशन की ये दुआएं बताएंगे, ऐसी ऐसी अहले बैत की दुआएं हैं डिप्रेशन की कि अगर 5-10 मिनट भी रिपीट करे वो बंदा उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। काउंसलिंग का बहुत बड़ा यहाँ जॉब्स है, मियाँ बीवी के झगड़े ज़्यादा हैं और ये लोगों के पास ये बहुत बड़े जॉब्स हैं, काउंसलिंग सिखाएंगे। 4 साल में ये बंदा सब कुछ माहिर हो जाएगा, मोटिवेट कर सकता है। लिहाजा इस महीने में अगर रजिस्टर हो जाए तो सिर्फ ट्यूशन फीस माफ़ है, वो तकरीबन ग्रेजुएशन में 5,000 है, मास्टर में 10,000 है, सिर्फ एडमिशन फीस उनको देनी पड़ेगी $100, बाकी सब फ्री है। ये 4 साल का कोर्स करने वो मिलियंस कमा सकता है, सिर्फ मिलियन कमा नहीं सकता है बल्कि एक सियासी फिगर बन सकता है और उसका असर होगा। लिहाजा ये अहले बैत का खजाना हमारा और इस्तेमाल दूसरे लोग कर रहे हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मैंने आपसे कहा कि 5 कोई भी बीमारी है जो जिनका इलाज एलोपैथी में नहीं है, या आप यहां रजिस्टर हो जाएं। अभी आज 60वां दर्स हमने भेजा है, मोस्ट ओल्ड ओल्डेस्ट मेडिसिन, इसमें आप रजिस्टर हो जाएं इंशाल्लाह ये पूरा कोर्स। 5 कोई भी बीमारी, तो आप हिंदू को काफिर को सबको इसमें ला सकते हैं, आप पहले खुद तो सीख जाए। बहुत सिंपल चीज है, जैसे मैंने कहा अखरोट से 10 साल की बीमारी जिसका एलोपैथी में इलाज नहीं था आधे सर का दम औरत ठीक हो गई। इसी तरह से सिंपल चीजें हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा बेह का दाना, बेह जो है वो दाना एक फ्रूट है, उसके खाने से कितनी चीजें फायदे, जहां तक ये 3 बीमारियां जो दिल की जिसका एलोपैथी में इलाज नहीं है वो आधी से ज्यादा बीमारी बेह और बेह के दाने खाने से ठीक हो जाती है। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिनको भी दिल की बीमारी है वो रोजाना क्वींस, इसका मुरब्बा भी मिलता है, मुरब्बे में इतना फायदा नहीं होता, क्वींस कहते हैं QUINCE, बेह जरूर खाएं, बेह जबरदस्त चीज है दिल के लिए बहुत सारी, और अक्ल को भी ये बढ़ाने वाली चीज है और दिल के लिए बहुत ताकतवर चीज है। तो ऐसे अहले बैत के नुस्खे हैं जो फ्री में है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि उससे कई बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और दूसरी चीज मैंने कहा था ऑर्फन एजुकेशन, आप पैसा ना दें, जो इल्म है वो यतीमों को पढ़ाएं। ऑर्फन एजुकेशन मसलन देखिए, हमारे इंग्लिश में लोग बहुत सारे वीक हैं, इंग्लिश में वीक होने की वजह से आईटी में भी वीक रहते हैं, दूसरी चीज़ों में भी। और जो यहाँ पर मसलन मर्द और ख़वातीन जो इंग्लिश, तो आप सभी जानते हैं कितने यतीम बच्चे हमारे पास, अब ऑनलाइन उनको आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ा दें तो इंग्लिश आ जाएगी तो वो दूसरी चीज़ें भी आगे बढ़ सकते हैं। यानी ये इल्म की ज़कात है, अब ऑनलाइन पढ़ाएं बच्चे को एक यतीम को, ये अजीम शान सवाब होगा, वो बेचारा ट्रांसलेशन करके अपना गुजारा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। सबसे बड़ी वीकनेस मसलन पाकिस्तान खुसूसन जामा हमारे एरिया है बल्तिस्तान गिलगित पाराचना, वहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, बहुत होशियार लोग होते हैं कि पहले स्कूल का निज़ाम ही ख़राब होता है। अगर ऑनलाइन आप उनकी इंग्लिश सही कर लें वो IT में भी माहिर हो जाएंगे, MBA भी कर लेंगे, सारे कोर्सेज कर लेंगे। हमारे बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की है। सलवात पढ़ी मोहम्मद। खुसूसन ख़वातीन अपने घरों से ये काम कर सकती हैं, ट्रांसलेशन का काम बहुत ज़बरदस्त है। देखिए इंग्लिश में किताबें ना होने की वजह से ये सदके जा रही है, आज किताब छपाने का मसला ही नहीं है, आप एप्स बना दें हर मोबाइल में आपकी किताब चली जाएगी। अभी सर ये हमने तकरीबन मैंने कहा खुलासे हमारे 50 दुरूस हैं जो हमने तकरीबन ये 15 इंसाइक्लोपीडिया जो तिब पर है फिर 4 में तब्दील हुआ और हमने उसे 50 दुरूस में मुख्तसर कर दिया है। जो इल्मी बहसें हैं जो बड़ी बड़ी रिवायतों की बहसें उन्हें हमने निकाल दिया, वो उलमा का काम है, आपके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो रिजाल की बहसें हमने निकाल दी, तो 50 दुरूस हमने ये रिकॉर्ड कर लिए। अब ये इंग्लिश में हो जाए तो दूसरे लोग भी फ़ायदा ले सकते हैं, और लैंग्वेज स्पेनिश में हो जाए फ्रेंच में हो जाए, ये खुद एक बहुत बड़ी नेमत है ہے کہ لینگویج کا جانا, تو آپ کئی لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں. اب ہمیں دعوت دی گئی مثلا وہاں پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہاں پر بھی وہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں, مثلا کئی سالوں سے دعوت دے رہے ہیں, ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے. ساؤتھ امریکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اس قدر عاشق اسلام کے, کہتے ہیں کہ یہودی نے اخبار میں ایڈ دیا کہ آ جاؤ میں تمہیں اسلام پڑھاتا ہوں اور $200 لے کے پڑھاؤں گا. کہا کتنے سو لوگوں نے جا کے رجسٹریشن کی اور یہودی کیا اسلام پڑھائے گا بتائیے, وہ 200, کیونکہ لوگوں کے اندر چاہت ہے, اس قدر چاہت ہے, لوگ مسلمان ہو رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنے علماء نہیں ہے کہ وہاں جائے, وہاں لینگویج وہاں اسپینش ہے. اب میں نے سرچ کیا کہ مثلا اگر وہابی لوگ ان کو وہابی بنا رہے ہیں تو چلو ہم وہ تیجانی کی کتاب بھیج دیں, اس سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا اسپینش میں ابھی تیجانی کی کتاب ہی ترجمہ نہیں ہے, نائٹس پشاور بھی شاید نہیں ہے. اب ان کتابوں کا صرف آپ ترجمہ کر دیں تو ملینز لوگ شیعہ ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ جو ہمارا اصل مشن ہے وہ تبلیغ دین اسلام مذہب محمد و آل محمد ہونا چاہیے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ اصل دولت ہے آپ کی, اصل پراپرٹی جو مرنے کے بعد جدا نہیں ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی ایک انسان اگر آپ کے ذریعے سے ہدایت پا جائے, یہ سب کے لیے جملہ ہمیں بتا رہے ہیں, وہ بھی خیبر میں کہا, یا علی ایک انسان اگر آپ کے ذریعے سے ہدایت پا جائے تو یہ افضل ہے پوری کائنات سے, اور جو کائنات کے اندر دولت سونا چاندی حکومت. ایک انسان اگر آپ ہدایت دے دیں, اللہ کا راستہ دکھا دیں, کیونکہ پوری کائنات کی دولت بھی آپ کے لیے مرنے کے بعد بیکار ہے, خاک ہے آپ کے لیے, مگر ایک انسان کو آپ نے ہدایت دی تو یہ آپ کا سرمایہ ہے, قبر میں بھی سرمایہ ہے, قیامت میں بھی, آخرت میں بھی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل. عزیز تبلیغ کریں, مشن بنائیں, ہدف بنائیں, گول سیٹنگ بنائیں کہ مجھے مرنے سے پہلے 20 لوگوں کو مومن بنانا. جیسے تبلیغی جماعت ہے, ہمارے یہاں کوئی تبلیغی جماعت ہی نہیں ہے. وہاں بھی ایک مہینہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اور وہاں پاکستان میں تجربہ کر کے دیکھا, فیصل آباد کے قریب کچھ ہمارے علماء نے تبلیغی جماعت بنائی اور اتنا زبردست رزلٹ کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کہا جس گاؤں میں ہم جاتے تھے آرام سے بڑی تعداد میں لوگ مومن ہوتے تھے, ہماری کہ مجلس کرو ماتم کرو بس ختم, دوسرے کو ہم کنورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. بتائیے ممبر کا کب تک بنا ہے, کتنے لوگوں کو آپ نے کنورٹ کیا, کیا نہیں کر سکتے. جتنا علم آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے, اہل بیت کا علم ہے. ہم نے گول سیٹنگ نہیں کی ہے کہ ہم نے کتنے کو کرنا ہے. ایک چھوٹی سی جماعت بنی اور بتایا جس شہر میں جاتے تھے بڑی تعداد میں لوگ کنورٹ ہو جاتے تھے. ہماری کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے, تبلیغی جماعت ہونی چاہیے. ہر امام بارگاہ میں ایک جوانوں کی ٹیم ہونی چاہیے, آئیں سیٹرڈے سنڈے آئیں اور یہ کتابیں بھیجیں, لوگوں سے مناظرہ کریں, لوگوں کے ڈسکشن کریں, پوری دنیا میں مناظروں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ شیعہ کو کہیں شکست نہیں ہوئی. اب ہسٹری دیکھیں, یہ کتاب بھی ابھی ہم نے کسی سے کہا تو ہے, کل پتہ نہیں انشاءاللہ جلد ترجمہ ہو جائے, فتوحات شیعہ, یہ آپ سب کو پڑھنی چاہیے. یہ مرحوم اسماعیل دیوبندی کے سارے مناظرے ہیں جو انہوں نے زندگی بھر کیے. ہمارے علاقے سندھ میں ان کا ایک مناظرہ تھا, ماڈے کا مناظرہ, اور مناظرہ جو اس طرف کرنے والا شخص تھا وہ اتنا منحوس تھا کہ عاشور کے دن جہاں سے جلوس گزرتا تھا, بہت بڑا پیسے والا زمیندار تھا, وہ جلوس کے سامنے جان بوجھ کے شراب پیتا تھا عاشور کے دن. تو کتنا خبیث انسان تھا, اور اس کا کزن مومن تھا. اور اسماعیل صاحب اور بشیر صاحب مرحوم آئے مناظرے کے لیے, ان کے مناظرے کے بعد پورے 20 گاؤں شیعہ ہو گئے, پوری قوم میں گاڑی ہے, اس میں سنی رہا ہی کوئی نہیں. और वो जो शराब पीता था जानबूझ के शियों को तंग करने के लिए और जुलूस के सामने, उसने भी तौबा कर ली, वो भी मोमिन बन गए। मरहूम इस्माइल साहब ने 100,000 लोगों को शिया बनाया है इन मुनाजरों से, 100,000। वो किताब है, उसको इंग्लिश में करें स्पेनिश में करें, कोई भी मजहब आपका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे मुनाजरे, अहल बैत के मुनाजरे, जितने जिंदगी में 12 इमामों ने मुनाजरे किए, 11 इमामों ने, वो एक आलिम दीन ने इकट्ठे कर लिए, 400 सफे की 2 किताबें, तर्जमा होना चाहिए, आप मुनाजरा सीख जाएंगे, मोटिवेशन में हम यही सिखाएंगे। कितना खजाना हमारे पास है, मगर हम एक आदमी को शिया नहीं करते, उल्टा हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये सलफी वहाबियों के पास कुछ भी नहीं है, वो बिस्तर बांध के महीना निकलते हैं और आप एक हफ्ता नहीं निकलते। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मोटिवेशन का कोर्स करें ताकि हम सब मिलके साउथ अफ्रीका चलें तबलीग करने के, प्रोग्राम बनाए, 3 महीने में आप सीख जाएंगे। वहां लोग प्यासे हैं, यहूदियों से इस्लाम सीख रहे हैं, नहीं कितने शर्म की मकाम की बात है कि हम तबलीग नहीं कर रहे हैं। वो पैसे लेख दे के बेचारे इस्लाम सीख रहे हैं, यहूदी से $200 दे के हमें इस्लाम सिखाओ, प्यासे हैं इस्लाम। वेनेजुएला का जो सदर मर गया है, उसे जहर दे के मारा पता नहीं, वो आया था ईरान में और आके ईरानियों से कहा कि मेरा पूरा मुल्क हाजिर है, आके इन्हें मुसलमान बनाओ, प्रेसिडेंट कह रहा है, मगर किसी मौली को स्पेनिश नहीं आ रही है। सलावत पढ़ी मोहम्मद। वो लैंग्वेज बैरियर, एक इतना बड़ा चांस है कि प्रेसिडेंट कर आओ मेरे सारे लोगों को शिया बनाओ, थोड़े बने लेकिन स्पेनिश नहीं आती थी। लिहाजा अजीजों, इस वक्त साउथ अमेरिका वाकई आमादा है आपकी तबलीग के लिए, बहुत, ये चिली है, ब्राजील है, इतने ये सारे मुल्क हैं, वो लोग प्यासे हैं दीन के लिए, प्यासे हैं। लिहाजा हमें तबलीगी एक जमात बनानी चाहिए, हाँ, और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इल्म है। इंशाल्लाह चंद लोग भी मिले तो जमात बन सकती है, कोई मुश्किल नहीं। छुट्टियों में आप जाइए, वहां 2-4 को मुसलमान बना के आए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बार दीगर सलवात आइए दुआ करें कि परवरदिगार हम सबको तबलीग इस्लाम करने की तौफीक अता फरमाए, और इंशाल्लाह ये तबलीग सबब बने कि इमाम जमाना का जल जहूर हो जाए। اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم سب ملكي اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم آل محمد وأجل 10 مرتبة يا غفار 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 بخش دے اے خدا ہم سب کے گناہ بخش دے تجھے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ تجھے شام کے قیدیوں کا واسطہ تجھے ان دکھیاری بیبیوں کا واسطہ جن پر ظلم کی انتہا ہو گئی ایک روایت سنے بڑی سخت روایت سے سادات سے معافی مانگتا ہوں
امام زمانہ اگر مجلس میں آئے ہیں یہ لوگ پانی روتے ہیں آپ خون روتے ہیں. بڑی سخت مصیبت ہے بی بی زینب کے لیے, میری آقا زادی شہزادی لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ جب کوفے کی بازار میں آئی, ایک یہودی بہت پیسے والا آیا, ایک سونے کی تھیلی شمر کو دی, ایک ابن سعد کو دی. کیوں دی؟ کہنے لگا ان قیدیوں کو یہودیوں کے محلے سے گزارو. اللہ اکبر. پہلے تو مسلمان پتھر مار رہے تھے, یہ بے دین پیسے کے لیے بک گئے, نبی کی نواسیوں کو یہودیوں کو اندازہ لگا. ظالم مان گئے حکم ملا اب قافلے کو یہودیوں کے محلے سے گزارو. یہ دوڑتا ہوا گیا جس نے پیسے دیے تھے, اپنے یہودیوں کے محلے میں کہنے لگا او لوگوں سنو, جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے آج آواز علی کی بیٹیوں سے التقام لو, علی کے بیٹیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, جتنے پتھر مارنا ہے انہیں پتھر مار, جتنی گرم خاک پھینکنی ہے ان کے سروں پہ بے. آئے سجاد کا جگر شاید یہیں بٹ گیا, آئے یہ بے غیرت نبی کی نوازیوں کو یہودیوں کے محلے میں لے آئے. ایک یہودی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں, ایک یہودی عورت خولی ملون جس کے پاس وہ نیزا تھا جس پر سر حسین موجود تھا, یہودی عورت نے خولی کو ایک تھیلی سونے کی دی, کہنے لگی یہ سر نزدیک لاؤ مجھے اس سر سے کچھ کرنا ہے. وہ ملعون پیسے کی لالچ میں سر حسین نزدیک لے آئے, یہودی عورت کہنے لگی نہیں نہیں اور نزدیک لے آؤ تاکہ میرا نشانہ خطا نہ ہو. یہ ملعون خولی اور سر حسین کو نزدیک لے کر آیا, اس ملعون نے ایک پتھر اٹھایا, اے زینب کی نظر پڑی سجاد یہ عورت کیا کرنا چاہتی ہے, سارے قافلے والے ادھر دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ اس کا ہاتھ بلند ہوا پھر ہاتھ نیچے آیا, سر حسین سے خون جاری ہوا. دوسری یہودی عورت نے دوسرا پتھر اٹھایا, وہ کہنے لگی تو نے بھائی کو مارا ہے میں بہن کو ماروں گی, اس نے بھی پتھر اٹھایا کہ زینب کو مارے. بی بی زینب ایسے دیکھ رہی تھی گویا بے زبانی سے کہہ رہی تھی مارو مارو, جب
اب حسین کمارا ہے اب زینب کو بھی مارا ظالمہ عورت کا ہاتھ بلند ہوا پھر ہاتھ نیچے ہوا زینب کے سر سے خون جاری ہوا سب بیبیاں فریاد کرنے لگی وا محمد وا علی وا حسین
میرے اللہ مولا حسین کے زخمی سر کے صدقے میں ہم گنہگاروں کے گناہ بخش دے ہمارے والدین کے گناہ بخش دے میرے اللہ گناہ بخش دے جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں ان کے گناہ بخش دے میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں موت نہ دینا جب تک نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس قضا ہے وہ ادا نہ کر دیں میرے اللہ تجھے تیرے عزت و جلال کا واسطہ ہے ہمارے دلوں میں محبت اہل فیت ہر روز بڑھاتا چلا جا دنیا کی محبت گھٹاتا چلا جا ہماری ظاہری باطنی طہارت بڑھاتا چلا جا اور نجاست کو ختم کرتا چلا جا میرے اللہ جو مومنین نیک دعائیں نیک تمنائیں لے کر آئیں سب کی نیک دعائیں قبول فرماؤ جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرماؤ جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما مقروض کا قرض ادا فرما جنہیں اولاد ان کی اولاد کو صالح فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما پوری دنیا سے ظلم ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے آقا مولا امام زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فرما میرے اللہ جو لاکھوں یتیم ہیں غریب ہیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء اسلام بانی مجلس حاضرین مجلس کے بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ الصمد ماتم حسین یا